अब मैं अध्याय दो, जिसका शीर्षक है समाज, उसका रिकॉर्डिंग करने जा रहा हूँ। इस शीर्षक के अंतर्गत हम निम्न रूप से समाज की विशेषताएं, समाज के प्रकार, सरल व जटिल समाज, एंथनी गिडेंस का समाज का वर्गीकरण, इन विषयों पर चर्चा करेंगे। सामान्य तौर पर समाजशास्त्र समाज का विज्ञान कहा जाता है, लेकिन खेद की बात यह है कि समाज जैसे महत्वपूर्ण शब्द के अर्थ के संबंध में समाजशास्त्रियों के बीच काफ़ी मतभेद है। अभी तक समाजशास्त्र में समाज की कई सर्वमान्य परिभाषाएं उपलब्ध नहीं हैं। किसी ने समाज शब्द का प्रयोग व्यक्तियों के समूह के लिए किया है, तो किसी ने समुदाय के लिए, तो किसी ने समस्त राष्ट्र के लिए किया है, और किसी ने तो समस्त मानव जाति के लिए भी किया है। कुछ लोगों ने समाज के को एक अमूर्त व्यवस्था माना है, तो कुछ ने उसे मूर्त। कभी कभी हमें समस्त मानव सभ्यता के लिए भी समाज शब्द का प्रयोग देखने को मिलता है। कभी तो यह शब्द बहुत ही विशिष्ट अर्थ में प्रयोग होता है, तो कभी बहुत ही सामान्य अर्थ में। समाज के अर्थ के संबंध में इन्हीं विभिन्नताओं के कारण जीडी मिचेल ने सही शब्दों में कहा है, द टर्म सोसाइटी इज वन ऑफ द वेगियस्ट एंड मोस्ट जनरल इन द सोशियोलॉजिस्ट वोकैबुलरी। इस संबंध में पहले हम मकीवर एवं पेज के विचारों को प्रस्तुत करना चाहेंगे, क्योंकि उनका विचार 20वीं सदी के 50 से लेकर 70 के दशकों तक समाजशास्त्र में काफ़ी लोकप्रिय रहा है। वर्तमान समाजशास्त्री मकीवर एवं पेज की तरह समाज को एक अमूर्त व्यवस्था मात्र के रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं है। मकीवर एवं पेज का कहना है कि समाज रीतियों एवं कार्य प्रणालियों, अधिसत्ता एवं पारस्परिक सहयोग, अनेक समूहों एवं विभाजनों, मानव व्यवहार के नियंत्रणों एवं स्वतंत्रताओं की व्यवस्था है। यह सतत परिवर्तनशील जटिल व्यवस्था है, जिसे हम समाज कहते हैं। यह सामाजिक संबंधों का जाल है और यह निरंतर परिवर्तनशील है। इसका तात्पर्य यह है कि समाज व्यक्तियों का समूह नहीं, बल्कि व्यक्तियों के बीच पाया जाने वाला पारस्परिक संबंध होता है। समाज कोई मूर्त संगठन नहीं है, अर्थात इसको देखा या स्पर्श नहीं किया जा सकता है। यह केवल सामाजिक संबंधों का एक जाल है। सोसाइटी इज द वेव ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स। इस कथन का तात्पर्य यह है कि समाज का निर्माण व्यक्तियों से नहीं होता, बल्कि व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाले संबंधों से होता है। जब लोग एक व्यवस्था में बंध जाते हैं, तो उस व्यवस्था को हम समाज कहते हैं। सामाजिक संबंधों से तात्पर्य व्यक्तियों की उन पारस्परिक क्रियाओं से है जो अर्थपूर्ण रूप से या किसी विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए स्थापित की जाती हैं। जैसे यदि कोई व्यक्ति अपनी जैविक अथवा सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति के साथ कोई क्रिया कर रहा है, तब ऐसी क्रिया को परिणाम स्वरूप स्थापित होने वाले संबंध को ही हम सामाजिक संबंध कहेंगे। सामाजिक संबंधों का निर्माण सामाजिक अंतःक्रिया यानी सोशल इंट्रैक्शन से होता है। सामाजिक अंतःक्रिया तीन स्तरों पर संभव है। व्यक्ति व्यक्ति के बीच अंतःक्रिया पहला, व्यक्ति समूह के बीच अंतःक्रिया दूसरा, और समूह तथा दूसरे समूह के बीच अंतःक्रिया ये तीसरा। इन तीनों स्तरों पर जिन क्रियाओं का आदान प्रदान होता है, उनके फलस्वरूप विभिन्न प्रकार के संबंधों का निर्माण होता है, वही समाज कहलाता है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि व्यक्तियों की पारस्परिक अर्थपूर्ण क्रिया का तात्पर्य यह होता है कि तमाम व्यक्ति किसी उद्देश्य को सामने रखकर, समझबूझकर, पूर्ण रूप से जागरूक होकर सामाजिक क्रियाओं को संपादित करते हैं। अनजाने या संयोगवश दो व्यक्तियों के बीच क्रिया हो जाए, तो उसे सामाजिक क्रिया नहीं कहेंगे। जैसे यदि राह चलते किसी व्यक्ति और स्कूटर चलाने वालों के बीच में टक्कर हो जाती है, और दोनों के बीच एक क्रिया प्रतिक्रिया होती है तो वह सामाजिक संबंध नहीं कहा जाएगा। व्यक्ति सामाजिक संबंध की स्थापना मूल रूप से अपनी विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति की प्रक्रिया में करता है। इसके अलावा और कई कारण हैं, जैसे पहला, विभिन्न प्रकार की सामाजिक संबंधों द्वारा तमाम प्रकार के हितों एवं लक्ष्यों की पूर्ति। दूसरा, व्यक्ति की मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति या संतुष्टि भी सामाजिक संबंधों द्वारा ही संभव है। तीसरा, व्यक्ति की सामाजिक क्रिया कुछ परिस्थितियों में अन्य व्यक्तियों या समूह के साथ मिलकर संपन्न होती है। इस क्रिया में दोनों एक दूसरे से परिस्थिति के अनुकूल व्यवहार की उम्मीद करते हैं। चौथा, प्रत्येक व्यक्ति समाज से शारीरिक एवं मानसिक सुरक्षा प्राप्त करना चाहता है। यह एक ऐसी आवश्यकता है जिसकी पूर्ति दूसरों के सहयोग के बिना संभव नहीं है। सामाजिक संबंधों में समय के साथ निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। आर्थिक, तकनीकी एवं राजनीतिक कारणों से संबंध के स्वरूप में परिवर्तन होता रहता है। आज ग्रामीण समुदाय में विभिन्न जातियों के लोगों के बीच पारस्परिक संबंध मात्र परंपरागत हैसियत के आधार पर ही नहीं होता। समाज की विशेषताएं, अब हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी। समाज की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए केवल उसकी परिभाषा जानना पर्याप्त नहीं है। समाज को ठीक से समझने के लिए उसकी प्रमुख विशेषताओं पर विचार करना ज्यादा आवश्यक है। यहाँ सर्वप्रथम हम मकीवर एवं पेज द्वारा दिए गए समाज की परिभाषा को ध्यान में रखकर उनकी विशेषताओं पर विचार कर रहे हैं। पहला, पारस्परिक जागरूकता यानी म्यूचुअल अवेयरनेस। समाज सामाजिक संबंधों को पाने माफ करिएगा इसे फिर से सुनिए पारस्परिक जागरूकता यानी म्यूचुअल अवेयरनेस। समाज सामाजिक संबंधों के ताने बाने से बनता है। इन सामाजिक संबंधों का निर्माण उसी अवस्था में हो सकता है जब लोग एक दूसरे को जानते हों। व्यक्ति एवं प्रकृति के बीच संबंध, पेड़ और जमीन के बीच संबंध, आदमी और मकान के बीच संबंध, ये सब भौतिक हैं, सामाजिक नहीं हैं, क्योंकि इनके बीच पारस्परिक पहचान तथा ज्ञान का अभाव है। भौतिक संबंध गोचर होता है, अर्थात उन्हें हम देख सकते हैं, पर सामाजिक संबंध अगोचर होता है, जैसे स्त्री पुरुष माता पुत्र पिता पुत्र के बीच का संबंध। निकट संपर्क के कारण पारस्परिक पहचान होती है, एक दूसरे को समझते हैं, परखते हैं, यह दिखाई नहीं पड़ता है। दूसरी विशेषता, समानता लाइकनेस। मकीवर एवं पेज ने कहा है कि समाज का आधार समानता है। यहाँ समानता व्यक्तियों की शारीरिक बनावट, रंग या उम्र की नहीं है, बल्कि विचारों, मूल्यों एवं जीवन के उद्देश्यों की है। परिवार का भी आधार एक प्रकार की समानता ही है। यदि किसी परिवार के सदस्यों के बीच विचारों या उद्देश्यों की समानता न रहे तो वह परिवार विघटित हो जाएगा। समानता के अभाव में लोग समाज में कभी एक साथ नहीं रह सकते हैं। तीसरी विशेषता, भिन्नताएं, डिफरेंसेस। समानता के साथ साथ समाज में भिन्नता भी अनिवार्य है। भिन्नता का सामाजिक महत्व है। समाज में कई प्रकार की भिन्नताएं पाई जाती हैं, जैसे व्यक्ति व्यक्ति के बीच योग्यता की भिन्नता, कार्य क्षमता की भिन्नता, रुचि की भिन्नता, इच्छा आकांक्षा एवं विचार की भिन्नता। इनके कारण समाज में प्रतिस्पर्धा, प्रतियोगिता एवं उद्यमशीलता की भावना पनपती है, जो समाज की प्रगति के लिए आवश्यक है। समाज का अस्तित्व इसलिए है कि भिन्न प्रकार की प्रवृत्ति, योग्यता, क्षमता वाले लोगों की क्रिया प्रतिक्रिया समाज में निरंतर चलती रहती है। समाज में पुरुष हैं, स्त्रियां हैं, कोई किसान है तो कोई मजदूर, ये तमाम भिन्नताएँ एक दूसरे के पूरक हैं। व्यक्ति व्यक्ति के बीच हैसियत एवं भूमिका का भी भेद है, उसी के अनुसार वे सामाजिक दायित्व निभाते हैं और इस तरह समाज में व्यवस्था स्थापित होती है। श्रम विभाजन सामाजिक भिन्नता का एक परिणाम है। चौथी विशेषता, सहयोग एवं संघर्ष, कोऑपरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। मकीवर एवं पेज का कहना है कि समाज सहयोग का दूसरा नाम है, किंतु इस सहयोग की स्थिति सामाजिक संघर्षों की समाप्ति के बाद आती है। समाज में शोषण एवं अन्याय के विरुद्ध संघर्ष चलता रहता है। कुछ समाज वैज्ञानिकों का मानना है कि संघर्ष की सफलता के बाद ही समाज में सामाजिक न्याय एवं समतामूलक स्थिति उत्पन्न होती है, भाईचारा एवं मानव सद्भाव उत्पन्न हो सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि समाज में सहयोग एवं संघर्ष एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों ही समाज की प्रगति एवं व्यवस्था के लिए आवश्यक हैं। संघर्ष का समाज में सहयोग से कम महत्व नहीं है। कार्ल मार्क्स ने कहा है कि वर्ग संघर्ष ही समाज के परिवर्तन का मूल कारण है। समाज की रचना में आमूल परिवर्तन संघर्ष प्रक्रिया की ही देन है। आर्थिक शोषण एवं सामाजिक अन्याय के विरुद्ध मुकाबला सामाजिक संघर्ष के द्वारा ही संभव है। यह संघर्ष हिंसक तथा अहिंसक दोनों हो सकता है। कार्ल मार्क्स ने जहां हिंसक संघर्षों की बात कही है, वहीं महात्मा गांधी ने इसके विपरीत अहिंसक संघर्ष का विचार व्यक्त किया है। पांचवी विशेषता, समाज अमूर्त है यानी एब्स्ट्रैक्ट। समाज के बारे में कहा जाता है कि समाज सामाजिक संबंधों का एक जाल है। सोसाइटी इज द वेव ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स। व्यक्तियों के समूहों का नाम समाज नहीं है, बल्कि व्यक्ति व्यक्ति के बीच और व्यक्ति समूह के बीच जो अंतःक्रिया होती है, उसके फलस्वरूप जो सामाजिक संबंध बनते हैं, उन्हीं के ताने बाने से जो चीज़ बनती है वही समाज कहलाता है। इसे देखा या स्पर्श नहीं किया जा सकता। दूसरे शब्दों में यह अगोचर तथा अमूर्त है। हम सामाजिक संबंधों का केवल अनुभव कर सकते हैं। परिवार, गांव, शहर इत्यादि में हम यह अनुभव करते हैं कि अमुक परिस्थितियों में हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। सामाजिक नियम समाज की अप्रत्यक्ष या अमूर्त शक्ति है जो हमें हर क्षण परिचालित करती रहती है। इसे हम अनुभव कर सकते हैं परंतु देख नहीं सकते हैं। इसी अर्थ में हम समाज को अगोचर या अमूर्त मानते हैं। छठी विशेषता, पारस्परिक निर्भरता, इंटरडिपेंडेंस। व्यक्ति तमाम सामाजिक समूहों में एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। मनुष्य अपनी आवश्यकताएं अकेली पूरी नहीं कर सकता है, उसे दूसरे व्यक्तियों या समूहों पर निर्भर रहना पड़ता है। व्यक्ति किसी भी आर्थिक समूह का हो, किसी भी देश का हो, समाज की आर्थिक एवं राजनीतिक प्रक्रिया व्यक्ति के पारस्परिक संबंधों द्वारा चलती है। पारस्परिक निर्भरता के कारण ही मानव समाज में भाईचारे का भाव पैदा होता है, समानता एवं सौहार्द की भावना आगे बढ़ती रहती है। इसलिए कहा जाता है कि समाज के एक क्षेत्र में अगर परिवर्तन होता है तो समयानुसार समाज के अन्य क्षेत्रों में भी परिवर्तन होता है, क्योंकि समाज के तमाम तत्व एक दूसरे से परस्पर जुड़े हुए हैं। सातवीं विशेषता, समाज निरंतर परिवर्तनशील है। ब्रिटिश समाजशास्त्री स्पेंसर के अनुसार परिवर्तन समाज का नियम है। कभी यह परिवर्तन तेजी से होता है तो कभी क्रमिक गति से, लेकिन परिवर्तन सदैव होता रहता है। समाज की परिवर्तन की शक्ति निहित है। समाज में परिवर्तन तेजी से होता है। जब बाहरी परिस्थिति बदलती है, समय ज्यों-ज्यों बीतता है, जनसंख्या बढ़ती है और समाज की जरूरतें बढ़ती हैं, इन बढ़ती हुई जरूरतों को पूरा करने के लिए हम पुराने संबंधों को बदलते हैं और नए नए सामाजिक संबंधों का निर्माण करते हैं। मकीवर एवं पेज ने कहा है, जहाँ कहीं भी जीवन है वहाँ समाज है। वेयर एवर देयर इज लाइफ देयर इज सोसाइटी। मानव समाज के अलावा पशुओं एवं कीड़ों मकोड़ों में भी समाज है। चींटियों के बीच भी समूहता देखी जाती है। पशुओं में अपनी माँ की पहचान है, माफ करिए इसे फिर से सुनिए, पशुओं में अपनी माँ की पहचान है। एक गाय का बछड़ा उसी गाय का दूध पिएगा जो उसकी माँ है। पशुओं के बीच सामूहिकता के साथ कुछ जागरूकता भी होती है, पर उनमें जागरूकता की मात्रा बहुत कम होती है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके बीच सीखने की क्षमता बहुत कम होती है। पशु सीखकर अपनी संस्कृति का निर्माण नहीं कर सकते हैं, उनके पास ऐसी भाषा नहीं है जिससे वे संस्कृति एवं सभ्यता का विकास कर सकें। यह केवल मानव जाति द्वारा ही संभव है कि वह सभ्यता एवं संस्कृति का विकास करता है। मानव गुफा और कंदराओं से निकलकर ऊंचे ऊंचे महलों तक पहुंच गया। इतना ही नहीं, यह मनुष्य ही है जिसने विभिन्न संस्थाओं का निर्माण के साथ साथ अनेक सूक्ष्म एवं जटिल सामाजिक संबंधों का निर्माण किया है। इसलिए समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र मानव समाज तक ही सीमित है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि समाजशास्त्र मात्र समाज का अध्ययन तक ही सीमित नहीं है। आज के समाजशास्त्र में समाज शब्द का प्रयोग इतने संकुचित अर्थ में नहीं किया जाता है। मकीवर एवं पेज की तरह वर्तमान समाजशास्त्री यह स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि समाज सामाजिक संबंधों का एक जाल है और यह एक अमूर्त व्यवस्था है। आज समाजशास्त्री समाज को एक मूर्त व्यवस्था के रूप में देखते हैं। जब कभी भी हम समाज शब्द का प्रयोग करते हैं तब उससे एक संगठित सामाजिक समूह का बोध होता है। एक छोटे से सामाजिक समूह या समिति से लेकर राज्य जैसे वृहत व्यवस्था के लिए भी समाज शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। आज मानवशास्त्री और समाजशास्त्री दोनों इन्हीं अवधारणाओं को ध्यान में रखकर समाज को सरल एवं जटिल समाज के रूप में वर्गीकृत कर रहे हैं। उसी को कुछ लोगों ने क्रमशः आदिम एवं आधुनिक समाज कहा है, तो कुछ लोगों ने उसे अशिक्षित एवं शिक्षित समाज कहा है। कुछ समाजशास्त्रियों ने समाज की इसी अवधारणा को ध्यान में रखकर खुला एवं बंद समाज का विचार व्यक्त किया है। मकीवर एवं पेज ने समाज को जिस रूप में परिभाषित किया है उसका स्वरूप अमूर्त है, उसका अवलोकन या प्रत्यक्षीकरण संभव नहीं है। मकीवर का यह विचार लगभग 30-40 साल पुराना हो गया है। अब समाजशास्त्र में समाज को मूर्त रूप में ही परिभाषित करने का प्रयास किया जाता है और इसी अर्थ में हम अमेरिकन समाज, भारतीय समाज, हिंदू समाज या मुस्लिम समाज जैसे अभिव्यक्तियों का प्रयोग करते हैं। जॉनसन ने समाज को मूर्त रूप में परिभाषित किया है। उन्होंने बताया है कि समाज एक ऐसा समूह है जिसमें चार तत्व पाए जाते हैं। पहला निश्चित क्षेत्र यानी डिफिनिट टेरिटरी, दूसरा प्रजनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तीसरा विस्तृत संस्कृति कॉम्प्रिहेंसिव कल्चर तथा चौथा स्वतंत्रता इंडिपेंडेंस। इन विशेषताओं की बारी बारी से यहाँ संक्षिप्त चर्चा की जा रही है। पहला निश्चित क्षेत्र डिफिनिट टेरिटरी। प्रत्येक समाज की एक अपनी सीमा होती है। जहाँ तक किसी समाज के सदस्य फैले होते हैं वहाँ तक उस समाज की सीमा होती है। जब हम भारतीय समाज या अमेरिकन समाज की बात करते हैं तो उससे समाज के क्षेत्रीय सीमा का बोध होता है। उसी तरह जब हम सिख समाज की बात करते हैं तो उससे भी किसी प्रदेश विशेष के निवासी का बोध होता है। प्रत्येक समाज की कोई न कोई सांस्कृतिक या भौगोलिक सीमा होती है। कोई भी समाज हमेशा के लिए घुमक्कड़ी स्थिति में नहीं रह सकता। स्थिरता एक ऐसी विशेषता है जो इंसान को जानवरों से अलग करती है। समाज की क्षेत्रीय सीमाओं के अंतर्गत बहुत से छोटे छोटे उपक्षेत्र होते हैं, जैसे विभिन्न जातियों, समुदायों का, जनजातियों का विशिष्ट क्षेत्र। उससे भी छोटे स्तर पर क्षेत्रीय सीमाओं की कल्पना की जा सकती है, जैसे रिश्तेदारों या पड़ोसियों का क्षेत्रीय समूह। दूसरा प्रजनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन समाज की एक प्रमुख विशेषता है। प्रत्येक समाज में यह प्रक्रिया स्वतः चलती रहती है। प्रजनन के द्वारा ही समाज में नए सदस्य आते हैं। यदि यह प्रक्रिया समाज में न चले तो समाज निश्चित रूप से कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाएगा, क्योंकि आदमी अमर तो होता नहीं है। यह सत्य है कि समाज में नए सदस्य कभी कभी प्रवास, उपनिवेशवाद, गोद लेने की प्रथा, किसी राज्य पर आक्रमण या विजय के माध्यम से भी आते हैं, पर ऐसी छिटपुट घटनाओं से समाज का अस्तित्व एक लंबे समय तक कायम नहीं रह सकता। प्रजनन निश्चित रूप से समाज के दीर्घकालीन अस्तित्व का एक सबसे बुनियादी माध्यम है। तीसरा, विस्तृत संस्कृति, कॉम्प्रिहेंसिव कल्चर। संस्कृति भी मानव समाज की एक बहुत ही प्रमुख विशेषता रही है, क्योंकि संस्कृति सिर्फ मनुष्यों के बीच पाई जाती है। यह संस्कृति ही है जो इंसानों को जानवरों से अलग करती है। संस्कृति के कारण ही मनुष्य विकास की प्रक्रिया में अन्य जीवों की तुलना में इतना अधिक सफल हुआ है। यह संस्कृति ही है जिसके कारण मनुष्य विभिन्न प्रकार के जीवों तथा प्राकृतिक वातावरण पर इतना अधिक नियंत्रण हासिल कर पाया है। संस्कृति किसे कहा जाता है, इसकी चर्चा की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। इस विषय पर प्रस्तुत पुस्तक से अलग से विस्तारपूर्वक चर्चा की जा रही है। चौथा, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता समाज की चौथी विशेषता है। प्रत्येक समाज का अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व होता है। भारत अंग्रेजों का उपनिवेश होते हुए भी भारतीय समाज एक स्वतंत्र समाज था। किसी राज्य के ऊपर यदि दूसरे राज्य का राजनीतिक नियंत्रण होता है तो वैसी स्थिति में भी समाज स्वतंत्र ही माना जाता है। जब हम भारतीय समाज, नेपाली समाज या किसी अन्य समाज की बात करते हैं तो उससे समाज की स्वतंत्रता का भी बोध होता है। यहाँ स्वतंत्रता से तात्पर्य समाज की आत्मनिर्भरता से है। समाज अपने आप में इस तरह पूर्ण होता है कि उसके सदस्यों को समाज से बाहर अंतःक्रिया करने की आवश्यकता नहीं होती है। इन विशेषताओं पर गौर करने पर एक स्वाभाविक प्रश्न यह उठता है कि क्या राज्य भी एक समाज है? इस संबंध में जॉनसन ने बताया है कि निश्चित भौगोलिक क्षेत्र एवं स्वतंत्रता के बावजूद राज्य को समाज नहीं कहा जा सकता है। राज्य समाज का एक अंग मात्र है, वह अपने आप में कोई समाज नहीं है। उसी प्रकार बहुत सारे राज्यों का एक समूह जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ, इसको भी समाज नहीं कहा जा सकता है। जॉनसन ने तो समाज के संबंध में विचार व्यक्त किया है, वह सैद्धांतिक रूप से भले ही सही हो, उसमें कुछ व्यवहारिक कमियां भी हैं। कोई भी समाज अपने आप में पूर्ण रूपेण स्वावलंबी नहीं हो सकता। अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उसे दूसरे समाज से संबंध जोड़ना ही पड़ता है। यदि समाज अपने आप में पूर्ण होता तो किसी समाज पर दूसरी संस्कृति की छाप नहीं पड़ती। एक समाज के अंदर तमाम लोग एक ही भाषा और एक ही धर्म के मानने वाले होते हैं। चूंकि समाज का स्वरूप काफ़ी मिश्रित होता है और वह अंतर्निर्भरता के सिद्धांत पर आधारित है, इसलिए जॉनसन के द्वारा दिए गए समाज का स्वरूप का एक आदर्श प्रकार आइडियल टाइप कहा जा सकता है। इस तथ्य को लेखक ने स्वयं स्वीकार किया है, लेकिन इसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि जॉनसन ने जो समाज के संबंध में विचार व्यक्त किया है वह आज तुलनात्मक रूप से सबसे ज़्यादा प्रचलित और लोकप्रिय है। इस तथ्य को ध्यान में रखकर समाज पर आगे चर्चाएं की जा रही है।